यीशु मसीह का प्रकाश इतवा की संख्या दो।
संधि के नाम।
शुरुआत में कुछ मूलभूत संदर्भ बिंदु सामने रखने के प्रयास में मैंने पिछले लेखों में कई बातें शामिल की हैं। अब मैं वर्तमान विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आदि से ही परमेश्वर हमारी ये समझ बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं कि वे कौन है और क्या है। इस कार्य में उन्होंने मनुष्यों को उनके विषय में जो कुछ प्रकट किया गया है उसे समझने में सहायता देने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, और उन्हीं उपायों में से एक है नामों का उपयोग। शास्त्रों में परमेश्वर को दिए गए अनेक नाम और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए गए नाम, वे बुराई और भलाई दोनों के प्रतिनिधि चुनते हैं। उसने इतिहास भर अपने चुने हुए वाचा के लोगों की युग व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तनों का भी उपयोग किया है, ताकि उसके चरित्र की समझ क्रमशः बढ़ती जाए। इसलिए वाचा से संबंधित युग व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तनों के इतिहास भी विविध प्रकार से उसके चरित्र और प्रकृति के सत्य के विस्तार की गवाही देते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को भूमिका और अगले अध्यायों की कुंजी के रूप में लें, तो हमें आरंभिक अध्याय में कुछ ऐसे सत्य मिलते हैं जो पूरी पुस्तक को प्रभावित करते हैं। उन सत्यों में से एक का संबंध इस बात से है कि यीशु मसीह कौन है, और केवल इस बात से नहीं कि वे अल्फा और ओमेगा है। यदि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कोई सत्य प्रस्तुत किया गया है, तो वो निश्चय ही अंतिम पीढ़ी के लिए परखने वाला वर्तमान सत्य है, और वो अंतिम पीढ़ी वही है जिसे पतरस ने चुनी हुई पीढ़ी कहा है।
मसीह के चरित्र के जिन गुणों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से एक है मसीह का आदि से अंत को पहचानना। जिस समय मसीह ने बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा की पुष्टि की, वो वाचा के संदर्भ में शाब्दिक इसराइल से आत्मिक इसराइल की ओर एक युग परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म ग्रंथों में जिन युग परिवर्तनों की पहचान की गई है, जो सभी मसीह के चरित्र और स्वरूप के विषय में ज्ञान की वृद्धि की ओर संकेत करते हैं, वे अब्राम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, मसीह यूनेच, विलियम मिलर और 1,44,000 से संबंधित है। उस रेखा के ऊपर एक और युग परिवर्तनों की रेखा भी रखी जाती है, जो परमेश्वर की कलीसिया के सात युगों की पहचान कराती है। इन्हें प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की 7 कलीसियाएं दर्शाती हैं, पर हम अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे। आदम और हव्वा के साथ भी एक युग परिवर्तन था, उनके पतन से पहले और पतन के बाद द्वारा चिह्नित, और नूह के समय में जल प्रलय से पहले और बाद के बीच भी स्वाभाविक ही एक युग परिवर्तन था। ये सारी रेखाएं उस प्रकाश में योगदान देती हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, परंतु फिलहाल हमारा ध्यान चुने हुए लोगों पर है। वाचा के सप्ताह के आरंभ में जब मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की, तब उनका बपतिस्मा हुआ।
और यीशु जब बपतिस्मा ले चुका, तो तुरंत जल से ऊपर आया, और देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गए, और उसने परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरते और उस पर ठहरते देखा। और देखो स्वर्ग से एक वाणी हुई जो कहती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3:16-17।
जब यीशु पानी से निकलकर ऊपर आए और इसी के साथ वाचा का सप्ताह आरंभ हुआ, तब परमेश्वर के सर्वप्रथम शब्द ये थे कि पिता ने घोषित किया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम प्रथम उल्लेख का नियम को समझते हैं, तो ये तथ्य बहुत प्रभावशाली है, यदि नहीं तो उतना नहीं।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी रूपहीन और सूनी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। उत्पत्ति 1:1-2।
जैसा कि उत्पत्ति में है, अभिषेक समारोह में परमेश्वर अतुअत के तीन व्यक्तियों की पहचान की गई है। ये सत्य कि यीशु परमेश्वर के पुत्र, दाऊद के पुत्र और मनुष्य के पुत्र थे, आने वाले 3.5 वर्षों तक शास्त्रियों और फरीसियों को बार बार उद्वेलित करता रहा। अपने बपतिस्मा के समय यीशु भविष्य सूचक अर्थ में यीशु से यीशु मसीह बन गए। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तो वे मसीह हो गए, जिसका अर्थ अभिषिक्त है, और इब्रानी में यही शब्द मसीहा है, और स्वाभाविक ही इब्रानी लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वे जानते थे कि वो दाऊद का पुत्र होगा। जब पृथ्वी के इतिहास के सबसे पवित्र 3.5 वर्षों की शुरुआत करने के लिए उनका अभिषेक हुआ, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा और अपने पिता की वाणी सुनी। ये एक अत्यंत गहन अभिषेक समारोह था जिसमें उनके और उनके कार्य के बारे में जो संदेश घोषित किया गया वो ये था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यहूदियों के लिए अधिक चिंताजनक केवल ये नहीं था कि वह परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि ये भी कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में ये दावा किया कि वह वास्तव में स्वयं परमेश्वर है। यहूदी अपनी समझ के अनुसार इतने ईशनिंदात्मक दावे को स्वीकार नहीं कर सके। यहूदियों की दुविधा अब्राहम की दुविधा है, क्योंकि अब्राहम यहूदियों के पिता थे, वाचा के पिता थे और वाचा की शर्तों का पालन करने हेतु आवश्यक विश्वास के प्रतीक भी थे। परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करने के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता है, उसके विषय में अब्राहम का उदाहरण दिखाता है कि उस विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। अब्राहम की परीक्षा जो ये सिद्ध करती कि उसका विश्वास वास्तविक है या मात्र मनमानी धारणा, इस बात पर आधारित थी कि क्या वो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, भले ही वो परमेश्वर के पहले दिए हुए वचन के प्रतिकूल प्रतीत होता हो। अब्राहम जानता था कि मनुष्य बलि हत्या है और ये उन मूर्ति पूजक जातियों की मूर्ति पूजा संबंधी प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती थी जिनके बीच वो तब रह रहा था। शास्त्री और फरीसी अपने आरंभिक वाचा इतिहास से जानते थे कि परमेश्वर केवल एक ही है, और वे ये भी जानते थे कि यीशु अपने आप को दूसरा परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। उनकी अंतिम परीक्षा ली जा रही थी।
हे इज़राइल, सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। व्यवस्था विवरण 6:4।
जिस ऐतिहासिक प्रसंग में मूसा ने पिछला पद लिखा, उसी में परमेश्वर पहले ही मूसा से कह चुके थे कि अब से वो यहोवा के नाम से जाना जाएगा। अब वो केवल सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के रूप में ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि उस समय से आगे वो यहोवा के रूप में जाना जाएगा। उसी इतिहास में जहां वो अपने नामों द्वारा व्यक्त अपने स्वभाव की समझ को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं, वो प्राचीन इसराइल को यह भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है। तो मसीह के समय के यहूदियों को क्या सोचना चाहिए था? अपने सेवा काल के बाद के समय में जब यरूशलेम में उनके विजयी प्रवेश का चरम आया, तो यहूदी एक बार फिर स्तब्ध रह गए कि यीशु बच्चों को अपनी स्तुति गाने दे रहे थे।
और जो भीड़ आगे आगे गई और जो पीछे पीछे चली, पुकार कर कहने लगी, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, ऊंचाइयों में होशाना। मत्ती 21:9।
उस गीत की वो पंक्ति जिसने फरीसियों को बौखला दिया, वही थी जिसमें यीशु को दाऊद का पुरत्र कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि दाऊद का पुत्र प्रभु का नाम है। उनकी सेवकाई के प्रारंभ में, उनके विजयी प्रवेश के समय और निसंदेह क्रूस पर भी विवाद में यीशु के नाम को लेकर हलचल रही।
तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, ये न लिख यहूदियों का राजा, परंतु ये लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। यूहन्ना 19:21 से।
बेशक पिलातुस के लिए लेख को बदलकर ये लिख देना, मैं हूं यहूदियों का राजा, मूलतः सही ही होता, क्योंकि मैं हूं वो नाम था जिसे यीशु ने अपने बारे में बार बार प्रकट किया था। बेशक उस त्रुटिपूर्ण तर्क को लागू करके परमेश्वर के वचन को बदलना, विशेषकर जब वो क्रूस का वृतांत हो, ऐसा काम तो मनुष्य कभी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? यीशु यहूदियों का राजा थे, पर वे मैं हूं भी थे, इसलिए मैं हूं यहूदियों का राजा ये कथन एक अर्थ में सही है, पर मुद्दा ये नहीं है। पूरे 3.5 वर्षों के आरंभ, मध्य और अंत तक उसके नाम को लेकर खलबली रही। वाचा के नामों की परंपरा के बारे में बहुत सी बातें समझनी है, पर यहां मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्राचीन इसराइल के अंत में यहूदी कलीसिया में मसीह के नाम को लेकर एक बड़ी हलचल हुई थी। दाऊद के पुत्र के रूप में उसके पास मसीहा होने की योग्यता थी। परमेश्वर के पुत्र अर्थात स्वयं भी परमेश्वर और मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु ने चुनी हुई प्रजा के लिए एक कड़ी परीक्षा प्रस्तुत कर दी। जब उनके वाचा इतिहास की शुरुआत में ही मूसा ने परमेश्वर के एकमात्र होने के विषय में इतना स्पष्ट कहा था, तब ये मनुष्य कैसे ये दावा कर सकता था कि वो स्वयं परमेश्वर है और साथ ही परमेश्वर का पुत्र भी।
फिर भी मनुष्यों के बीच मसीह के चलने फिरने का यही उद्देश्य था। परमेश्वर उनमें था और मनुष्यों को अपने साथ मेल कर रहा था, और वो ये इस प्रकार कर रहा था कि लोगों को यीशु को देखने देता था, जिन्होंने स्पष्ट और सीधे तौर पर सिखाया कि यदि तुमने उन्हें देखा है तो तुमने पिता को देखा है। ये इतिहास परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में जातीय इसराइल के अंत का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रारंभ से ही इस बात पर गहरा विवाद रहा कि परमेश्वर कौन है और क्या है।
और फिरौन ने कहा, प्रभु कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इसराइल को जाने दूं? मैं प्रभु को नहीं जानता और न ही मैं इसराइल को जाने दूंगा। निर्गमन 5:2।
फिरौन न केवल परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध नास्तिक विद्रोह के प्रतीक को प्रकट कर रहा है, बल्कि अब्राहम के परमेश्वर के विषय में मिस्री समझ को भी अभिव्यक्त कर रहा है। और बार बार प्रभु ने कहा है कि मिस्र में उसके अद्भुत कार्य इसीलिए थे कि मानव जाति जान सके कि वो कौन है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वास्तविक इसराइल की शुरुआत का इतिहास अंत का पूर्व रूप ठहरता है। दोनों इतिहासों में इस बात को लेकर समझ की कमी है कि परमेश्वर कौन है और इनका स्वरूप क्या है, और ये बात उनके विभिन्न नामों से जुड़ी हुई है। परंतु हमारे विचार के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब इसराइल चुने हुए लोगों के रूप में अपने अंत पर था, उस समय का मसीही संबंधी इतिहास ये दिखाता है कि यहूदियों के अपने मसीहा को स्वीकार करने में ठोकर खाने का एक प्रमुख कारण ये था कि वे जानते थे कि उनकी वाचा इतिहास की शुरुआत में परमेश्वर के वचन ने ये घोषित किया था कि वो एक ही परमेश्वर है। क्या ही दुविधा!
और उसके बाद उन्होंने उससे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया, और उसने उनसे कहा, वे कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? और दाऊद ने स्वयं भजनों की पुस्तक में कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। इसलिए दाऊद उसे प्रभु कहता है। फिर वो उसका पुत्र कैसे है? लूका 20:40-44।
ये यहूदियों के लिए अंतिम प्रश्न उत्तर का समय है, क्योंकि उस संवाद के बाद वे उनसे कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी पूछने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने अभी अभी अपनी सेवा में खोए हुए घराने के लिए अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया था, और भविष्यवाणी की कथा में हमेशा एक खोया हुआ घराना होता है। और फिर वे अपने नाम के विषय को दाऊद का पुत्र के रूप में और इसलिए मसीहा के रूप में उठाते हैं। 3.5 वर्षों के दौरान विवाद में उनके विभिन्न नाम शामिल रहे जो उनके चरित्र और स्वभाव को दर्शाते हैं। उनके नाम का उल्लेख शुरुआत में, उनके बपतिस्मा के समय और फिर सुसमाचारों के अन्य स्थानों सहित खोए हुए घराने के साथ उनके अंतिम संवाद में विजयी प्रवेश पर और क्रूस पर किया जाता है।
जब वे शास्त्री के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, फरीसी यीशु के चारों ओर पास पास इकट्ठे हो गए थे। तब मुड़कर उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वो किसका पुत्र है? ये प्रश्न उनके मसीहा के विषय में विश्वास को परखने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि वे उसे मात्र मनुष्य मानते हैं या परमेश्वर का पुत्र। कई आवाजों ने एक साथ उत्तर दिया, दाऊद का पुत्र। ये वही उपाधि थी जो भविष्यवाणी ने मसीहा को दी थी। जब यीशु ने अपने शक्तिशाली चमत्कारों से अपनी दिव्यता प्रकट की, जब उन्होंने बीमारों को चंगा किया और मरे हुओं को जलाया, तब लोगों ने आपस में पूछा, क्या ये दाऊद का पुत्र नहीं है? सिरोफिनी की स्त्री, अंधा बर्तिमाई और बहुतों ने सहायता के लिए पुकार कर कहा, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। Matthew 15:22। जब वे यरूशलेम में सवारी करते हुए प्रवेश कर रहे थे, तब उनका स्वागत आनंद के जय घोष से किया गया, दाऊद के पुत्र को होशन्ना, वो धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। Matthew 21:9। और उस दिन मंदिर में छोटे बच्चों ने भी उस आनंदित स्तुति को दोहराया था। परंतु बहुत से जिन्होंने यीशु को दाऊद का पुत्र कहा, उसकी दिव्यता को नहीं पहचाना। वे ये नहीं समझे कि दाऊद का पुत्र परमेश्वर का पुत्र भी है।
इस कथन के उत्तर में कि मसीह दाऊद का पुत्र था, यीशु ने कहा, तो फिर दाऊद आत्मा में परमेश्वर से आने वाली प्रेरणा की आत्मा उसे प्रभु कैसे कहता है? ये कहते हुए प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं? यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे है? और कोई भी उसे एक भी बात का उत्तर न दे सका, और उस दिन से किसी ने आगे उससे कोई और प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। द डिजायर ऑफ एजेस 6:9।
मसीहा के रूप में उनका अभिषेक और जिन्हें बचाने के लिए वे आए थे उनसे उनकी अंतिम बातचीत, ये सब उनके दैवत्व, उनके नामों के प्रतीकवाद और बेशक पहले उल्लेख के नियम पर केंद्रित थे। यीशु ने यहूदियों के लिए अपने प्रत्यक्ष कार्य का समापन आध्यात्मिक दाऊद के बारे में सिखाने के लिए वास्तविक दाऊद के इतिहास का उपयोग करके किया। जब प्रभु प्रभु से ये कहते हैं कि वो उनके साथ सिंहासन पर बैठे, तो दाऊद इस पर टिप्पणी क्यों करेगा? क्योंकि शुरू में राजा दाऊद अंत के आध्यात्मिक राजा दाऊद का प्रतिनिधित्व करता है। खोए हुए घराने को यीशु के अंतिम कथन को सही तरह से समझने का एकमात्र तरीका पहले उल्लेख का नियम लागू कर पाना था, जो संभव ही नहीं यदि आपको वो नियम पता न हो। खोए हुए घराने के लिए उसके अंतिम कथन को समझने के लिए प्रथम उल्लेख के नियम की समझ आवश्यक थी। अपने अंतिम कथन में खोए हुए घराने के सामने सत्य प्रस्तुत करने के लिए यीशु ने दाऊद और दाऊद के पुत्र का उपयोग किया। आखिर वे दाऊद का घराना ही तो थे, इसलिए यीशु ने पिता दाऊद को लेकर उसे दाऊद के पुत्र की ओर मोड़ दिया और पुत्र का दाऊद का को लेकर उसे उसके पिता दाऊद की ओर भी मोड़ दिया। उसने पिता को बालक की ओर मोड़ दिया, जैसा कि अंतिम दिनों में इलिया के संदेश के विषय में भविष्यवाणी की गई है। वह उसका प्राचीन शाब्दिक इसराइल के लिए अंतिम संदेश था, और वह इलिया संदेश था क्योंकि वह प्रथम उल्लेख के नियम पर आधारित था। अतः प्रथम उल्लेख का नियम स्वयं भी उसी नियम के आधार पर यीशु के संदेश की इलिया संदेश के रूप में पुष्टि करता है। प्रथम उल्लेख का नियम ये मांग करता है कि यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इलिया संदेश इसराइल के खोए हुए घराने के लिए अंतिम चेतावनी संदेशों में पहला था, तो उन्हें दिया गया अंतिम संदेश भी इलिया संदेश ही होगा, और ऐसा ही हुआ। ये सब कहने के बाद मैं अब इन सब से एक बिंदु निकालूंगा जो प्रथम उल्लेख के नियम अल्फा और ओमेगा पर आधारित है। प्राचीन इसराइल की शुरुआत में परमेश्वर कौन और क्या है की समझ को लेकर एक विवाद था, जो प्राचीन इसराइल के अंत में होने वाले उसी विवाद का पूर्व रूप था। प्राचीन इसराइल के अंत में मसीह के कार्य में इसराइल के खोए हुए घराने को ये सिखाना भी शामिल था कि परमेश्वर कौन है और क्या है। अंत के इतिहास में मसीह के विरुद्ध एक विरोध था जो उस मूल सत्य पर आधारित था जो शुरुआत में स्थापित किया गया था। आधुनिक आध्यात्मिक इसराइल के इतिहास में भी वही भविष्य सूचक विशेषताएं होंगी। एडवेंटवाद की शुरुआत में इतिहासकार बताते हैं कि मिलराइट्स मुख्यतः दो ईसाई संप्रदायों से बने थे, मेथडिस्ट और क्रिश्चियन कनेक्शन। मेथडिज्म की प्राथमिक मान्यताएं सही ईसाई जीवन शैली जीने पर आधारित थीं। उनके पास विधि थी। क्रिश्चियन कनेक्शन के प्रमुख विश्वास को कैथोलिक त्रित्व सिद्धांत के विरोध के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। जहां तक मेरी शोध पहुंची है, मिलराइट्स के लगभग समूचे नेतृत्व ने क्रिश्चियन कनेक्शन के उस सिद्धांत को अपनाया था। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट SDARM की कई शाखाएं हैं जो अब भी त्रित्व विरोध की मूल मिलराइट समझ को मानती और उसका प्रचार प्रसार करती हैं। जो लोग इस अग्रणी समझ को बनाए रखते हैं उनके लिए एक दुविधा और वर्तमान विवाद का स्रोत ये रही है और हमेशा रहेगी कि उन अनेक और विविध अंशों के प्रति वे कैसे प्रतिक्रिया दें, जहां सिस्टर व्हाइट उनके द्वारा मानी और प्रचारित सिद्धांतगत स्थिति का सीधे विरोध करती हैं।
मुझे ये कहने का निर्देश दिया गया है, जो लोग उन्नत वैज्ञानिक विचारों की खोज में हैं, उनके विचारों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित जैसे चित्रण किए जाते हैं, पिता अदृश्य प्रकाश के समान है, पुत्र देहधारी प्रकाश के समान है, आत्मा चारों ओर फैला हुआ प्रकाश है, पिता ओस के समान है, अदृश्य वाष्प, पुत्र सुंदर रूप में इकट्ठी हुई ओस के समान है, आत्मा जीवन के आधार तक गिरी हुई ओस के समान है। एक और चित्रण, पिता अदृश्य वाष्प के समान है, पुत्र भारी धूसर मेघ के समान है, आत्मा चरौ वर्षा है जो गिरकर ताजगी देने वाली शक्ति में कार्य करती है।
ऐसे सभी आध्यात्मिक चित्रण मात्र शून्यता है, वे अपूर्ण हैं, असत्य हैं। वे उस महिमा को क्षीण और छोटा करते हैं जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक सदृश्यता से नहीं की जा सकती। परमेश्वर की तुलना उन वस्तुओं से नहीं की जा सकती जो उसके हाथों से बनाई गई हैं। ये तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं जो मनुष्य के पापों के कारण परमेश्वर के शाप के अधीन पीड़ित है। पृथ्वी की वस्तुओं से पिता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पिता सशरीर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है और नश्वर दृष्टि के लिए अदृश्य है। पुत्र में देवत्व की सारी परिपूर्णता प्रकट हुई है। परमेश्वर का वचन ये घोषित करता है कि वो उसकी सत्ता की छाप है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पिता का व्यक्तित्व प्रकट होता है। वो सांत्वनादाता जिसे मसीह ने स्वर्ग पर आरोहित होने के बाद भेजने का वचन दिया था, देवत्व की सारी परिपूर्णता में आत्मा है, जो उन सब के लिए जो मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते और विश्वास करते हैं, दैवी अनुग्रह की सामर्थ्य को प्रकट करता है। स्वर्गीय त्रयर में तीन जीवित व्यक्ति हैं। इन तीन महान शक्तियों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जो लोग जीवित विश्वास से मसीह को ग्रहण करते हैं, वे बपतिस्मा लेते हैं और मसीह में नया जीवन जीने के उनके प्रयासों में ये शक्तियां स्वर्ग की आज्ञाकारी प्रजा के साथ सहयोग करेंगी। विशेष गवाही, श्रृंखला बी, संख्या 7, 62-63।
ये अनुच्छेद उन लोगों की भावनाओं को जो पिता, पुत्र और आत्मा को परिभाषित कर रहे थे, पृथ्वी की चीजों के साथ जोड़ता है। फिर वो कहती है, पिता का वर्णन पृथ्वी की चीजों से नहीं किया जा सकता। उसकी कही दो बातों पर ध्यान दें, हालांकि उनमें से एक विरोधाभास जैसी लग सकती है। वो ईश्वरत्व के ऐसे गलत वर्णन की पहचान कर रही है जो यूं कहे तो तीन देवताओं को निरूपित करता है। ये ईश्वरत्व का एक गलत वर्णन है, पर वो इस तथ्य पर कोई टिप्पणी नहीं करती कि ईश्वरत्व की वो गलत परिभाषा इसलिए भी गलत है कि उसमें ईश्वरत्व में देवताओं की संख्या ही गलत है। ये भी ध्यान दें कि वो कहती है कि पृथ्वी की चीजों का उपयोग पिता का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। उसी कथन में वो स्वयं पृथ्वी की चीजों का ही उपयोग कर रही है। बच्चे, माताएं, पिता, बुआएं और मौसियां और चचेरे ममेरे भाई बहन तो मनुष्यों के ही होते हैं, और यीशु हमें बताते हैं कि स्वर्ग में नई बनाई गई पृथ्वी पर अब विवाह नहीं होगा, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। स्वर्गदूतों में लड़का लड़की का भेद नहीं है। मनुष्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्दों का उपयोग परमेश्वर ने हमें अपने स्वभाव और चरित्र के बारे में शिक्षा देने के लिए किया है, परंतु पृथ्वी की चीजें जिन्हें प्रेरणा ने भी मनुष्यों को परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के बारे में सिखाने हेतु उपयोग किया है, अपूर्ण है। हमें बताया गया है कि स्वर्गीय त्रयी के तीन जीवित व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन तीन व्यक्तियों के साथ सांसारिक आत्मवादी भावनाएं जोड़ना घृणास्पद है, पर बाइबल के अनुसार परमेश्वरत्व की परिभाषा के साथ इन तीन महान शक्तियों के नाम जोड़ना घृणास्पद नहीं है। भविष्यद्वक्त्री कहती हैं कि परमेश्वर तक को बनाने वाली तीन महान शक्तियों का नाम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जैसे हर बाइबलीय सत्य में होता है, जब पंक्ति पर पंक्ति मिलाकर देखा जाए तो संपूर्ण गवाही में प्रकट किए गए प्रत्येक मार्ग चिन्ह का समावेश होना चाहिए। भविष्यद्वक्ताओं की गवाहियों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। दानियल मसीह को पालमुनी नाम देता है अन्य नामों के साथ। ये तो केवल एक उदाहरण है। यूहन्ना उन्हें अल्फा और ओमेगा कहता है और मूसा उन्हें यहोवा कहता है। एलन वाइट के अनुसार उसका नाम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है।
सैतान निरंतर झूठी जानतों को भीतर घुसाने का प्रयास कर रहा है ताकि सत्य से दूर ले जाए। सैतान की सबसे अंतिम छलना ये होगी कि वो परमेश्वर की आत्मा की गवाही को बिल्कुल अप्रभावी कर दे। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। नीतिवचन 31:18। सैतान चतुराई से विभिन्न तरीकों से और विभिन्न माध्यमों के द्वारा सच्ची गवाही के प्रति परमेश्वर के शेष लोगों के विश्वास को डगमगा देने का काम करेगा। गवाहियों के विरुद्ध एक शैतानी घृणा भड़का दी जाएगी। शैतान का कार्य ये होगा कि वो गवाहियों पर कलीसियाओं का विश्वास डगमगा दे। इस कारण से यदि परमेश्वर के आत्मा की चेतावनियों, ताड़नाओं और परामर्शों पर ध्यान दिया जाए तो अपने छलों को भीतर घुसाने और अपने भ्रमों में आत्माओं को बांध लेने के लिए शैतान के पास इतना स्पष्ट मार्ग नहीं रह जाएगा। सिलेक्टेड मैसेजेस पुस्तक 1:48।
इस अंश से एक त्वरित अतिरिक्त बिंदु, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण यूहन्ना को पटमोस में निर्वासित कर दिया गया है। तीसरे स्वर्दूत के संदेश के दो लक्षित श्रोता हैं, एडवेंटवाद के बाहर के लोग और एडवेंटवाद के भीतर के लोग। यूहन्ना एक ऐसे एडवेंटिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल बाइबल का आज्ञा पालन करने के कारण संसार द्वारा सताया जा रहा है, बल्कि भविष्यवाणी की आत्मा के लेखों का आज्ञा पालन करने के कारण भी सताया जा रहा है। भविष्यवाणी की आत्मा के विरुद्ध जो उत्पीड़न किया जाता है वो बाहर से नहीं भीतर से आता है। प्राचीन इसराइल के प्रारंभ में मिस्र में 400 वर्ष बिताने के बाद जो वाचा के चूने हुए लोग होने वाले थे वे अब सब नहीं मानते थे। वे मसीह के चरित्र या स्वभाव को नहीं जानते थे। वे परमेश्वर के बारे में उन गलतफहमियों से चिपके हुए थे जिन्हें उन्होंने बंधुआई के दौरान आत्मसात कर लिया था। 10 विपत्तियां, लाल सागर से मुक्ति, स्वर्गीय मन्ना, पवित्र स्थान और उसके सारे सार सामान, पवित्र विधियां, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, परमेश्वर की व्यवस्था, वह चट्टान जो उनके पीछे पीछे चलती थी, उस चट्टान से निकला जल जो उनके पीछे पीछे चलती थी, और यहां तक कि डंडे पर का सांप, ये सब इस उद्देश्य से थे कि उसके चुने हुए लोगों में परमेश्वर का ज्ञान बढ़े। ये एक प्रगतिशील शिक्षा थी। वो प्रगतिशील शिक्षा तब तक जारी रही जब तक कि शास्त्रियों ने उससे आगे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया, और तब उसने उस अंतिम विषय की पहचान की जिस पर वे उससे खुले रूप में चर्चा करने वाले थे, और वो दाऊद के नाम के विषय में तथा मसीह कौन है और क्या है इससे संबंधित था। आधुनिक आध्यात्मिक इसराइल की शुरुआत में आध्यात्मिक बाबुल में 1060 वर्षों के बाद जिन्हें चुने हुए वाचा के लोग होना था वे अब सप्त का पालन नहीं करते थे। वे मसीह के चरित्र या स्वरूप को नहीं जानते थे। वे बंदीवास के दौरान जो परमेश्वर के बारे में गलत फहमियां उन्होंने आत्मसात कर ली थीं उन्हीं से चिपके रहे। एडवेंटिज्म का इतिहास अपने सभी मील के पत्थरों, धर्म त्यागों, समझौतों और आंतरिक संघर्षों सहित 1880 के दशक में उस बिंदु पर पहुंचा जब द डिजायर ऑफ एजेस प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के पृष्ठ 67 पर परमेश्वरत्व के विषय में एक ऐसी समझ अंकित है जो 18वीं सदी से आई समझ से कहीं आगे विकसित हो चुकी है। प्राचीन इसराइल के अपने अंत के समय एक विवाद उठा जो ईश्वरत्व की सीमित समझ से पैदा हुआ था, ऐसी समझ जो उनके प्रारंभिक इतिहास की धारणा पर आधारित थी। यीशु की गवाही कहती है कि चाहे पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा, तीनों ईश्वरत्व की परिपूर्णता देधारी होकर है। कुलुसियों 2:9। बाइबल की गवाही कहती है, हे इसराइल सुन, हमारा परमेश्वर प्रभु एक ही प्रभु है। व्यवस्था विवरण 6:4। आधुनिक इसराइल देवत्व के बारे में अनेक विचार रखता है और उनमें से केवल एक ही सही है। आधुनिक इसराइल के अंत में जब तक अनुग्रह का समय शेष है परमेश्वर अपने चरित्र को प्रकट करने के कार्य को पूरा कर देगा। यही उसने यहूदियों के लिए किया था और वो कभी बदलता नहीं। ये निश्चित है कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र की अपनी समझ में बढ़ते रहेंगे, परंतु सत्य की एक उद्देश्यपूर्ण भविष्य सूचक रेखा हमारे लिए जो ये प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर ने अपनी विषय में अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए कैसे प्रयास किए हैं, और वही इतिहास उस शिक्षा का भाग है जिसे वो अभी सिखाना चाहता है, और उस शिक्षा प्रक्रिया के संबंध में भविष्यवाणी के वचन में पाई जाने वाली जानकारी उस चर्चा के एक अंत को चिन्हित करती है जो अनुग्रह का समय समाप्त होने से मेल खाता है।
मसीह परमेश्वर के अनादि से विद्यमान स्वयं विद्यमान पुत्र है। अपने पूर्व अस्तित्व की चर्चा करते हुए मसीह मन को अनादि युगों तक पीछे ले जाते हैं। वो हमें आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब वो अनंत परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति में न रहे हों। वो जिसकी आवाज़ यहूदी तब सुन रहे थे
परमेश्वर के साथ ऐसे रहा था जैसे कोई जो उसके साथ पला बढ़ा हो। साइंस ऑफ द टाइम्स, 23 अगस्त 1900।
वो परमेश्वर के समान था, अनंत और सर्वशक्तिमान। वो शाश्वत स्वयं विद्यमान पुत्र है।
जहां परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर रहते समय मसीह के मानवत्व का वर्णन करता है, वहीं वो उनके पूर्व अस्तित्व के विषय में भी स्पष्ट रूप से बोलता है। वचन एक दिव्य सत्ता के रूप में विद्यमान था, अर्थात परमेश्वर के अनंत पुत्र के रूप में, अपने पिता के साथ एकता और ऐक्य में। अनादि काल से वो वाचा का मध्यस्थ था, वही जिसमें पृथ्वी की सब जातियां, यहूदी और अन्य जाति दोनों, यदि वे उसे स्वीकार करते तो आशीषित होती। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मनुष्य या स्वर्गदूतों के रचे जाने से पहले वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। रिव्यू एंड हेराल्ड, 5 अप्रैल 1906।
उस अंश में वो जॉन के सबसे पहले शब्दों का उद्धरण करती है।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसके बिना जो कुछ बना उसमें से एक भी नहीं बना। यूहन्ना 1:1-3।
आदि में कम से कम दो परमेश्वर थे, क्योंकि यूहन्ना ने कहा वचन परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले पद में हिब्रानी शब्द एलोहीम का अनुवाद परमेश्वर था। अक्सर परमेश्वर के वचन में एलोहीम को ऐसी व्याकरणिक संरचना में रखा जाता है जो एक वचन परमेश्वर की पहचान कराती है, परंतु फिर भी वो शब्द बहुवचन ही है। इस विषय पर अपनी दूसरी गवाही से यूहन्ना उस पद में एलोहीम को एक वचन परमेश्वर मानने के विचार को निरस्त कर देता है। उसकी गवाही ये स्थापित करती है कि कम से कम दो परमेश्वर हैं। जो त्रित्व विरोधी लोग भविष्यवाणी की आत्मा का समर्थन करने का दावा करते हैं, उनके लिए इससे भी अधिक चिंताजनक बात ये है कि आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जो आत्मा जल के ऊपर चला वो पिता था या पुत्र, या फिर जैसा कि सिस्टर वाइट उन्हें संबोधित करती है, स्वर्गीय त्रयी का तीसरा व्यक्ति था। यूहन्ना के सुसमाचार की पहली 3 आयतों के बाद ये शब्द आते हैं।
उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे नहीं समझा। यूहन्ना 1:2-5।
प्रकाश और अंधकार का संदर्भ उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत से पूर्णतः मेल खाता है, जिसमें कहा गया है,
और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने प्रकाश को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। उत्पत्ति 1:3-4।
हम शीघ्र ही उन 2 समानांतर अंशों पर लौटेंगे जो उस प्रकाश से संबंधित हैं जो ईश्वरत्व के परिचय के बाद आने वाले सृष्टि वृत्तांत का विषय है। आदि में जिस पहली सच्चाई पर विचार किया जाता है वो ईश्वरत्व का गठन या स्वरूप है, परंतु ये खंड अध्याय 2:3 तक जारी रहता है, जहां हम देखते हैं कि सृष्टि वृत्तांत के अंतिम 3 शब्द उन 3 हिब्रू अक्षरों से आरंभ होते हैं जो मिलकर उस शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अनुवाद सत्य किया जाता है। सृष्टि वर्णन की शुरुआत परमेश्वरता का परिचय कराती है, फिर उसके वचन की सृजनात्मक शक्ति को प्रस्तुत करती है, और फिर ये अंश एक दिव्य हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है जो सत्य, तीसरे स्वर्गदूत के संदेश और परमेश्वर के नाम का, जिसे अल्फा और ओमेगा द्वारा दर्शाया गया है, प्रतिनिधित्व करता है।
और 7वें दिन पर परमेश्वर ने अपने किए हुए कार्य को समाप्त किया, और उसने 7वें दिन अपने सब कार्यों से जो उसने किए थे विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपने सब कार्यों से जिन्हें परमेश्वर ने सृजा और बनाया था विश्राम किया। उत्पत्ति 2:2-3।
परमेश्वर के वचन में सिखाई गई प्रारंभिक सच्चाइयों का समापन ही इस खंड का चरम बिंदु है। ये गॉड, क्रिएटेड और मेड इन 3 शब्दों पर समाप्त होता है, जिससे इस खंड की शुरुआत पर तो बल पड़ता ही है, उतनी ही महत्ता से 7वें दिन के सप्त पर भी जोर दिया जाता है। सप्त स्वाभाविक ही सृष्टि का प्रतीक और परमेश्वर
तथा उसकी चुनी हुई प्रजा के बीच का चिन्ह है। सत्य उन तीन अक्षरों में व्यक्त है जो सृष्टि के उन अंतिम तीन शब्दों में से प्रत्येक की शुरुआत करते हैं। ये गवाही इस बात पर जोर देती है कि सप्त का सत्य कितना महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है, पर उतना ही गहन ये भी है कि वे तीन अक्षर पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेश के तीन चरणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार बाइबल के बिल्कुल पहले खंड में परमेश्वर की सृजन शक्ति के चिन्ह के रूप में सप्त को समय के अंत में होने वाली परीक्षा के मुद्दे के रूप में भी पहचाना गया है। बाइबल की अंतिम पुस्तक यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी गवाही के साथ एक तीसरा साक्षी भी प्रस्तुत करती है।
आशिया में जो सात कलीसियाएं हैं उनके लिए यूहन्ना की ओर से अनुग्रह और शांति तुम पर हो, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उसके सिंहासन के सामने जो सात आत्माएं हैं उनकी ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान है। उसी ने हमसे प्रेम किया और अपने लहू से हमारे पापों को धोया और हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए राजा और याजक बनाया। उसी की महिमा और प्रभुत्व युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वे भी जिन्होंने उसे भेदा था, और पृथ्वी के सब कुल उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा, आमीन। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत, प्रभु कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान।
मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और क्लेश में तथा यीशु मसीह के राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमोस कहलाने वाले उस द्वीप में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और अपने पीछे मैंने तुरही के समान एक बड़ी आवाज़ सुनी जो कहती थी, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख और उसे एशिया की सात कलीसियाओं को भेज, इफिसुस को और स्मुर्ना को और पर्गमुन को और थुआतीरा को और सार्दिस को और फिलाडेल्फिया को और लाओदीकिया को। प्रकाशित वाक्य 1:4-5।
प्रकाशित वाक्य वेको के पहले अध्याय के पहले तीन पद अंतिम चेतावनी संदेश की पहचान करते हैं और ये बताते हैं कि वो संदेश परमेश्वर से मानव जाति तक कैसे पहुंचाया जाता है। वे ये भी बताते हैं कि ये पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, और इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और दानियेल की पुस्तक के बीच एक भेद रेखांकित करते हैं। एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियेल की पुस्तक का पूरक है, एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना है। जो पुस्तक मुहरबंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं बल्कि दानियेल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। दूत ने आज्ञा दी, परंतु तू हे दानियेल इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर अंत के समय तक मुहर बगा दे। दानियेल 12:4। प्रेरितों के काम 550।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें पहचाना जाना है और रेखा पर रेखा जोड़कर एक साथ लाया जाना है। वे सारी भविष्यवाणी रेखाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आकर समाप्त होती हैं, पर जो पुस्तक मुहरबंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं थी, और ये भी नहीं कि दानियेल की पूरी पुस्तक ही मुहरबंद की गई थी, बल्कि दानियेल की पुस्तक में जो मुहरबंद किया गया था वो था दानियेल की उस भविष्यवाणी का वो हिस्सा जो अंतिम दिनों से संबंधित है। अंतिम दिनों को सामान्य अर्थ में समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रेरित शब्द जो कि वे है के रूप में समझना ये भी अपेक्षित करता है कि हम आकलन करें कि अंतिम दिनों की अभिव्यक्ति से कोई भविष्य सूचक प्रतीकवाद जुड़ा है या नहीं। अंतिम दिन भविष्यवाणी के इतिहास की एक विशिष्ट अवधि है और इसके समर्थन में कई आधार है। मेरी आशा है कि निकट भविष्य में मैं वह इतिहास को प्रस्तुत करूं। ये विशेष रूप से 1798 से लेकर परख काल के समापन तक का इतिहास है। इसे पहचानने का एक तरीका ये है कि शाब्दिक पवित्र स्थान सेवा में वर्ष का एक दिन न्याय का प्रतिनिधित्व करता था, और वो था प्रायश्चित का दिन।
वो शाब्दिक समारोह के 7 दिन में उस बात का प्रतीक था जिसे सिस्टर वाइट प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित का दिन कहती हैं। भविष्य सूचक या आध्यात्मिक प्रायश्चित का दिन परख काल के अंतिम दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अंतिम न्याय की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। दानियल में जो भविष्यवाणी सील कर दी गई थी वो दोहरी थी। अंतिम दिनों से संबंधित एक भविष्यवाणी थी जिसे मिलराइट्स ने पहचाना था, जो न्याय के उद्घाटन की घोषणा करती थी। दानियल का वो खंड अध्याय 8 और 9 के उलाई नदी के दर्शन द्वारा निरूपित है। दूसरी भविष्यवाणी जिसे दानियल में सील कर दिया गया था, न्याय के समापन, एडवेंटवाद के अंत, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत और संसार के अंत की घोषणा करती है। उस दर्शन का प्रतिनिधित्व हिद्देकेल नदी द्वारा किया गया था।
जो प्रकाश दानियल को परमेश्वर से मिला था वो इन अंतिम दिनों के लिए दिया गया था। उलाई और हिद्देकेल शिनार की महान नदियां के किनारों पर उसने जो दर्शन देखे वे अब पूरी होने की प्रक्रिया में हैं और सब पूर्व कथित घटनाएं शीघ्र ही घटित होंगी। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 152-101 सन।
उलाई का दर्शन 1799 में उद्घाटित हुआ और ये परमेश्वर के पवित्र स्थान और उसके लोगों से संबंधित है। हिद्देकेल का दर्शन 1989 में उद्घाटित हुआ जब, जैसा कि दानियल अध्याय 11 पद 40 में वर्णित है, पूर्व सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले देश पापसी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बहा दिए गए और ये परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं से संबंधित है। ये दोनों दर्शन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं और 7 मुहरों की भांति कार्य करते हैं। एक कलीसिया का आंतरिक इतिहास है और दूसरा कलीसिया का बाहरी इतिहास है और दोनों संपूर्ण अवधि को आवृत करते हैं तथा विशेष रूप से इन अंतिम दिनों के लिए है। परंतु यद्यपि हमें बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुहरबंद पुस्तक नहीं है, हमें ये भी बताया गया है कि वो एक मुहरबंद पुस्तक है।
प्रकाशित वाक्य एक मुहरबंद पुस्तक है, पर ये एक खुली हुई पुस्तक भी है। ये इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में घटित होने वाली अद्भुत घटनाओं का वर्णन करती है। इस पुस्तक की शिक्षाएं स्पष्ट हैं, वे रहस्यमय और अबोधगम्य नहीं हैं। इसमें वही भविष्यवाणी की धारा उठाई गई है जो दानियल में है। परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणियों को दोहराया है ये दिखाने के लिए कि उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। प्रभु उन बातों को नहीं दोहराता जो किसी विशेष महत्व की नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 9-8।
प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ इसलिए खुला है क्योंकि दानियल की भविष्यवाणियां खुल चुकी हैं और दानियल में जिन भविष्यवाणी की धाराओं की मुहरें खोली गई हैं वही धाराएं प्रकाशित वाक्य में भी पाई जाती हैं। प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ में जो मुहर बंद था वो प्रकाशित वाक्य का वो भाग था जो विशेष रूप से अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा से संबंधित है। जब बहन व्हाइट ने ये कथन लिखा उस समय 7 गर्जन मुहर बंद था, इसलिए उन्होंने लिखा कि यह एक मुहर बंद पुस्तक है। उन्होंने ये भी कहा कि दानियल का ग्रंथ वह पुस्तक जो मुहर बंद थी अतीत काल में था। उनके लिए उसकी मुहर 1097 में खोल दी गई थी। उसके जीवनकाल में 7 गर्जनाओं के विषय में जो मुहर बंद किया गया था वो मात्र उन भविष्य की घटनाओं के बारे में नहीं था जिनका प्रतिनिधित्व 7 गर्जनाएं करती हैं, बल्कि मुख्यतः ये था कि 7 गर्जनाएं ये दर्शाती हैं कि एडवेंटवाद की शुरुआत एडवेंटवाद के अंत के समानतर है। 7 गर्जनाएं यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण भविष्य सूचक नियम को प्रकट करती है और साथ ही परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के एक गुण को भी उजागर करती है जो सभी वस्तुओं का आदि और अंत है। भविष्यवाणी ये संकेत करती है कि परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र से संबंधित सत्यों का एक उद्देश्यपूर्ण विकास होता है। जब यीशु को यहूदा के गोत्र का सिंह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो उस कार्य का प्रतीक है जिसे वो इतिहास के दौरान सत्य को क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से प्रकट करते हुए पूरा करता है। वो भविष्यद्वाणी के वचन को उस समय तक मुहरबंद रखता है जब तक उसके समझे जाने का समय नहीं आता। वो शिक्षा के उद्देश्य से सत्य को मुहरबंद भी करता है और उसे खोलता भी है। फालमोनी के रूप में यीशु अद्भुत गणक है, समय का स्वामी जो अपने इतिहास को नियंत्रित करता है। अल्फा और ओमेगा के रूप में वो अन्य बातों के साथ साथ भाषा का भी स्वामी है। यहूदा के गोत्र का सिंह के रूप में वो नियंत्रित करता है कि मनुष्यों के सामने सत्य कब प्रकट किया जाए। प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में पहले तीन पदों के बाद परमेश्वर को तीन भिन्न व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
एशिया में जो सात कलीसियाएं हैं उन्हें जॉन की ओर से आप पर कृपा और शांति हो। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन सात आत्माओं से जो उसके सिंहासन के सामने हैं और यीशु मसीह से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मृतकों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान है। प्रकाशित वाक्य 1:4-5।
बाइबल की अंतिम पुस्तक की प्रस्तावना में परमेश्वर की कलीसिया को स्पष्ट रूप से ऐसा अभिवादन भेजा गया है जो पिता, आत्मा और पुत्र की पहचान करता है। परमेश्वर के वचन का समापन आरंभ की पुनरावृत्ति करता है और ऐसा करते हुए देवत्व की सही समझ के महत्व पर जोर देता है। ये उनके लिए ऐसा कर रहा है जो फिलाडेल्फियन होंगे और 1,44,000 का समूह बनाएंगे। वे अंतिम वाचा जन हैं जिन्हें वाचा इतिहास की विभिन्न धाराओं में प्रतिरूप के रूप में दर्शाया गया है। वे साक्षी अन्य सत्यों के साथ ये स्थापित करते हैं कि भविष्यवाणी के इतिहास भर में परमेश्वर अपने स्वभाव और चरित्र के ज्ञान को क्रमशः बढ़ाने का प्रयत्न करता रहा है। बाइबल में मनुष्य के परमेश्वर के ज्ञान की कमी का सबसे बड़ा प्रतीक फिरौन था, जो मिस्र का प्रतिनिधि था और मिस्र समस्त संसार का और इस प्रकार समस्त मानव जाति का प्रतीक था। वही मार्ग चिन्ह शाब्दिक इसराइल की शुरुआत में उस प्रक्रिया का आरंभ करता है जहां परमेश्वर अपना नाम प्रकट करना चाहता था। शाब्दिक इसराइल के अंत में परमेश्वर के नाम को लेकर वही विवाद फिर से दोहराया गया। शाब्दिक इसराइल के अंत में यीशु ने दाऊद के इतिहास का उल्लेख किया और प्रथम उल्लेख का नियम लागू किया ताकि यहूदियों की लाओदिकियाई अंधता के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सके। वे ये नहीं समझ सके कि वो क्या कह रहा था क्योंकि वे अल्फा और ओमेगा के नियम को नहीं जानते थे और न ही उनके सामने खड़े अल्फा और ओमेगा को जानते थे। आध्यात्मिक इसराइल के आरंभ में मूसा के इतिहास में प्रतीकित विवाद का समान अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे एडवेंटवाद अंतिम दिनों के इतिहास से होकर गुजरा है, अल्फा और ओमेगा को और अधिक समझने के अनेक अवसर दिए गए हैं, जैसा कि प्राचीन इसराइल के साथ भी था। एडवेंटवाद के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब और प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि मसीह के दिनों में हुआ था। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के उस अंश पर लौटते हुए हम देखते हैं कि अनुग्रह और शांति उससे जो है, जो था और जो आने वाला है तथा सात आत्माओं से और यीशु से भी भेजी जाती हैं। परमेश्वर का निरूपण यीशु, सात आत्माएं और उसके रूप में किया गया है। जो है, जो था और जो आने वाला है, इससे हम जानते हैं कि जो है, जो था और जो आने वाला है के रूप में व्यक्त विशेषताएं पिता की ही हैं। ये विशेषताएं परमेश्वर के अनंत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो सदैव से विद्यमान है और पद 8 और 9 में यही गुण स्पष्ट रूप से यीशु को दिया गया है।
मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत, प्रभु कहता है, जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और क्लेश में तथा यीशु मसीह के राज्य और धैर्य में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पटमोस कहलाए हुए द्वीप में था। प्रभु के दिन मैं आत्मा में था और मैंने अपने पीछे तुरही के समान एक बड़ी आवाज सुनी जो कह रही थी, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख और उसे एशिया की सात कलीसियाओं को भेज, इफिसुस को और स्मिरना को और पर्गमुस को और थुआतीरा को और सार्दिस को और फिलाडेल्फिया को और लाओदिकिया को। प्रकाशित वाक्य 1:8-11।
जिनके पास ऐसी बाइबल है जिसमें यीशु के वचन लाल रंग में लिखे होते हैं, वे जानते हैं कि 8 और 11 पदों में बोलने वाले यीशु ही है
उन पदों में यीशु ये घोषित करते हैं कि उनके पास पिता के समान बिल्कुल वही शाश्वत स्वभाव है, जब वे स्वयं को वह प्रभु जो है, जो था और जो आने वाला है कहकर प्रकट करते हैं। और यीशु ये भी जोड़ते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शुरुआत में जहां ये स्पष्ट किया गया है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु सबसे पहले यही कहते हैं कि वह आदि और अंत है, कि वह भी पिता के समान अनंत है और कि वह स्वयं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में यीशु के प्रथम वचन परमेश्वर के स्वभाव के गुणों को ही प्रस्तुत करते हैं। ये गुण उन एडवेंटिस्टों के लिए सीधे ठोकर का कारण है जो अभी भी परमेश्वरत्व के मूल मत का बचाव करते हैं। वे मानते हैं कि एक समय ऐसा था जब पिता ने अपने पुत्र को उत्पन्न किया।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंत प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शुरुआत से मेल खाता है।
दूसरा आगमन ईश्वरत्व के वर्णन के बाद आता है। अध्याय 22 में हम पाते हैं कि पुस्तक का अंत उसकी शुरुआत से मेल खाता है, और पद 12 दूसरे आगमन का उल्लेख करके अध्याय 1 के पद 7 के समानांतर है।
और देखो, मैं शीघ्र आ रहा हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, ताकि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार दूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ताकि उन्हें जीवन के वृक्ष का अधिकार मिले और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। क्योंकि बाहर कुत्ते और जादूगर और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर कोई जो झूठ से प्रेम करता और उसे गढ़ता है, हैं। मैं यीशु ने कलीसियाओं के लिए तुम्हारे पास अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वो इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश हूँ और उज्जवल भोर का तारा, और आत्मा और दुल्हन कहती हैं आओ, और जो सुनता है वो कहे आओ, और जो प्यासा है वो आए, और जो चाहे वो जीवन का जल बिना मूल ले ले। प्रकाशित वाक्य 22:23 तक थोड़ो।
दूसरे आगमन का उल्लेख करने के बाद यीशु, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में है, स्वयं को अल्फा और ओमेगा बताते हैं। फिर वे उन लोगों के बीच भेद करते हैं जो आत्मा द्वारा कलीसियाओं से कही गई बात को सुनेंगे और जो नहीं सुनेंगे। वो अध्याय 1 की पहली से तीसरी आयतों में दर्शाई गई संप्रेषण प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, ये बताकर कि उन्होंने संदेश लेकर गब्रियल को यूहन्ना के पास भेजा। तब वो प्राचीन इसराइल के अंत में शास्त्रियों और फरीसियों से किए गए अपने अंतिम कथन पर लौटता है। वो शारीरिक इसराइल और आत्मिक इसराइल दोनों के अंत को एक साथ जोड़ देता है, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य में अंतिम दिनों के लोगों के लिए उस बात का उत्तर देता है जिसे अपने अंतिम दिनों में यहूदी समझ नहीं सके। वो कहता है कि वो दाऊद की जड़ और वंशज अंत है। दाऊद और उसके प्रभु का विषय वही अंतिम कथन था जो यीशु ने कुतर्क करने वाले यहूदियों से किया था, और ये उन लोगों के लिए अंतिम घोषणा का प्रतिरूप ठहरता है जो अंतिम दिनों में फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिए गए संदेश के अनुसार अपने को यहूदी कहते हैं पर है नहीं।
देख, जो शैतान की सभा में हैं, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और हैं नहीं, परंतु झूठ बोलते हैं, देख, मैं उन्हें ऐसा कर दूंगा कि वे आकर तेरे पावों के सामने झुके और जाने कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। क्योंकि तूने मेरे धैर्य के वचन को थामे रखा है, मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी से बचाए रखूंगा जो समस्त संसार पर आने वाली है, ताकि पृथ्वी पर रहने वालों की परख हो। प्रकाशित वाक्य थीतान 9:10।
जो संतों के चरणों में पूजा करते हैं वे लाओदिकियाई एडवेंटिस्ट हैं, जिन्हें प्रभु के मुख से उगल दिया गया है।
आप सोचते हैं कि जो संत के चरणों के आगे झुकते हैं प्रकाशित वाक्य 3:9 बार वे अंततः उद्धार पाएंगे? यहाँ मुझे आपसे असहमत होना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये वर्ग वे लोग थे जो स्वयं को एडवेंटिस्ट बताते थे, जो धर्म त्याग कर चुके थे, और उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से सूली पर चढ़ाया और उसे खुल्लम खुल्ला लज्जित किया, और परीक्षा की घड़ी में जो अभी आने वाली है, ताकि हर एक का सच्चा चरित्र प्रकट हो, उन्हें पता चल जाएगा कि वे सदा के लिए खो गए हैं, और आत्मा की पीड़ा से अभिभूत होकर वे संत के चरणों पर झुकेंगे। छोटे झुंड के लिए वचन 12।
बाइबल और भविष्यद्वाणी की आत्मा के अनुसार जो संतों के पावों पर दंडवत करते हैं वे शैतान के सभागृह के सदस्य हैं। वे अपने आप को यहूदी बताते हैं पर है नहीं। धर्मी एडवेंटिस्टों को फिलाडेल्फिया की कलीसिया में संबोधित किया जा रहा है। 144,000 फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सदस्य हैं और जो लोग कहते तो हैं कि वे यहूदी हैं पर है नहीं, वे लौदीकिया के लोग हैं। अंतिम दिनों में विश्वास योग्य लोगों की दो श्रेणियां हैं, 144,000 और वे जो शहीद होते हैं। 7 कलीसियाओं में से केवल 2 ऐसी हैं जिन पर कोई आलोचना नहीं है। एक है फिलाडेल्फिया, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी नहीं मरते, और दूसरी है स्मरना, जो विश्वास योग्य शहीदों का प्रतिनिधित्व करती है। शहीद और जो नहीं मरते, स्मरना और फिलाडेल्फिया, इन्हीं 2 कलीसियाओं को दिए गए संदेश के साथ कोई दोषारोपण नहीं जुड़ा है। फिर भी दोनों कलीसियाओं को उन लोगों से निपटना पड़ा जो अपने आप को यहूदी कहते थे पर थे नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम दिनों में वे सब एक ही कलीसिया के सदस्य हैं और वही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक वर्ग जिसे अपने लहू से साक्षी देना नियत है, जिसका प्रतिनिधित्व रूपांतरण के पर्वत पर मूसा ने किया, और दूसरा वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व उस एलिया ने किया जो कभी नहीं मरा।
और स्मिरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, पहला और आखिरी जो मरा था और अब जीवित है, ये कहता है, मैं तेरे कामों, क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, तथापि तू धनी है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं बल्कि शैतान की सभा के है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जिन बातों को तुझे सहना पड़ेगा उनसे मत डर। देख, शैतान तुम में से कुछ को परीक्षा के लिए बंदी गृह में डालेगा ताकि तुम परखे जाओ, और तुम 10 दिन तक क्लेश सहोगे। मृत्यु तक विश्वास योग्य रह, और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:8-10।
जब यीशु स्मिरना की कलीसिया की कठिन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं तो वे केवल एक सकारात्मक टिप्पणी करते हैं जब वे कहते हैं, परंतु तुम धनी हो, और इस प्रकार उनकी तुलना शैतान की सभा के उन सदस्यों से करते हैं जो धनी नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य में वे जो एडवेंटिस्ट है और अपने को धनी समझते हैं पर है नहीं, वही यहूदी है जो कहते हैं कि वे यहूदी है पर है नहीं, क्योंकि वे लाओदिकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है। प्रकाशित वाक्य के आरंभ में ईश्वर तुको 3 व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में यीशु और आत्मा का सीधे उल्लेख है परंतु पिता का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पंक्ति पर पंक्ति के सिद्धांत को पहला अंतिम को दर्शाता है कि साथ मिलाकर देखने पर ये आवश्यक ठहराता है कि प्रकाशित वाक्य के अंतिम पदों में पिता को पहचाना जाए, क्योंकि प्रारंभिक पदों में वह पहले ही वहां उपस्थित के रूप में पहचाना जा चुका है। ये यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय से कुछ भिन्न नहीं है, जहां यूहन्ना आत्मा का सीधा उल्लेख नहीं करता, परंतु ये समझा जाता है कि आत्मा वहां है, क्योंकि आदि में वाक्यांश जब पहली बार लिखा गया था तब से ही आत्मा वहां था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 ठीक उसी वाक्यांश आदि में से आरंभ होता है। आरंभ एक भविष्य सूचक प्रतीक है, और इसे भविष्य सूचक नियमों, जिनमें पंक्ति पर पंक्ति भी शामिल हैं, के अनुसार परखा जाना चाहिए। मूसा का आरंभ यूहन्ना के सुसमाचार का आरंभ है, वही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आरंभ है, और वही प्रकाशित वाक्य का अंत भी है। उन 4 पंक्तियों में से 2 में स्वर्गीय त्रय की 3 व्यक्तियां पहचानी जाती हैं। एक पंक्ति यूहन्ना का सुसमाचार में आत्मा शायद अनुपस्थित है, और 4 पंक्ति में पिता अनुपस्थित है, परंतु जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो 3 दिव्य व्यक्तियां सभी 4 पंक्तियों में प्रकट होती है। मसीह पिता को प्रकट करने आए, और पवित्र आत्मा पुत्र को प्रकट करने आए। 3 ने शाश्वत बलिदान दिए। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने यीशु को दे दिया, और यीशु ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अनंत काल तक अपने द्वारा रचे हुए लोगों के समान मानवीय देह धारण करने को स्वीकार किया। सृष्टिकर्ता का अपनी ही सृष्टि का भाग बनने का चुनाव करना किस प्रकार के देने का उदाहरण है। त्रितु के 3रे व्यक्ति ने स्वयं को दे दिया क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति कहलाने वाली रची हुई सत्ता के भीतर वास करने की भूमिका अनंत काल तक स्वीकार कर ली है। शायद इसी कारण पवित्र आत्मा को बार बार परमेश्वर के लोगों के प्रतीकों से जोड़ा जाता है। वो ईश्वर तो का वो व्यक्तित्व है जो मानवीय सृष्टि के साथ वास करने वाला है। इसलिए शास्त्रों में पवित्र आत्मा के प्रतीक प्रायः ऐसे चिह्नों द्वारा दर्शाए गए हैं जो पवित्र आत्मा और मानव जाति दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदि में आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रहा था,
और उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखा, जहां वो वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ें, जातियां और भाषाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 17:15।
मूसा द्वारा स्थापित पितृ स्थान में साज सामान की वो एकमात्र वस्तु जिसके लिए कारीगरों के पालन हेतु कोई विशेष रूप से विस्तृत नमूना नहीं दिया गया था, 7 शाखाओं वाला दीवट था। दीवट मानवता और दिव्यता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण पवित्र स्थान में दीवट का रूपांकन ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे मनुष्यों के योगदान पर छोड़ दिया गया था। मसीह जिन 7 दीवटों के बीच चलता है, वे 7 कलीसियाओं के रूप में पहचाने जाते हैं। फिर भी दीवट तेल से भरा जाता था जो पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था, और प्रकाश के लिए ज्वाला को बनाए रखने वाली बत्तियां याजकों के प्रयुक्त श्वेत लिनन के वस्त्रों से बनाई जाती थीं, जो मसीह की उस धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जगत की ज्योति के रूप में चमकती है। परमेश्वर की प्रजा जगत की ज्योति है, पर वो ज्योति केवल पवित्र आत्मा के तेल से ही पोषित होती है। पवित्र शास्त्रों में पवित्र आत्मा के वर्णन में उन्हें प्रायः लोगों से संबद्ध किया गया है।
और सिंहासन से बिजलियां, गर्जन और आवाजें निकल रही थीं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 4:5।
यहां 7 दीपों की पहचान परमेश्वर की 7 आत्माओं के रूप में की गई है। फिर भी हमें बताया गया है कि 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं।
मेरे दाहिने हाथ में जो 7 तारे तूने देखे और 7 सोने के दीवटों का भेद ये है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट जो तूने देखे 7 कलीसियाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 1:20।
वे 7 दीपदान 7 आत्माएं भी हैं और परमेश्वर की कलीसिया भी है।
और मैंने देखा, और देखो, सिंहासन के बीच में और 4 प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेमना खड़ा था, मानो वो वध किया गया हो। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 5:6।
7 सींग और 7 आंखें भी वही पवित्र आत्मा है जो संपूर्ण पृथ्वी पर भेजा जाता है, और जब किसी मसीही का बपतिस्मा होता है तो उसे भी संपूर्ण पृथ्वी पर भेजा जाता है, क्योंकि उसका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होता है। रविवार के कानून के संकट के शहीदों पर और 1844 से आधुनिक आध्यात्मिक इसराइल में विश्वास में मरने वाले सभी लोगों पर उच्चारित आशीर्वचन में, उनके अंतिम संस्कारों में श्रद्धांजलि वही पवित्र आत्मा देता है जब वो कहता है, हाँ, वे अपने परिश्रम से विश्राम करें, क्योंकि उनके परिश्रम के दौरान, यहाँ तक कि जब तक उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए, तब तक वो उनके साथ था।
और मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जो मुझसे कहती थी, लिख, अब से जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हाँ, आत्मा कहता है कि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएं, और उनके काम उनके पीछे पीछे आते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:13।
जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत और आरंभ, बाइबल के आरंभ और यूहन्ना के सुसमाचार के आरंभ पर विचार करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि परमेश्वरत की तीनों व्यक्तियां वहां प्रकट हैं। हालांकि पंक्ति पर पंक्ति सिद्धांत को लागू करने पर पिता का वहां होना समझ में आता है। वहां पुत्र स्वयं को अल्फा और ओमेगा कहता है। यदि हम ये पहचाने कि मानवता और देवत्व का संयोजन पवित्र आत्मा और मानव जाति का संयोजन है, तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के प्रतीक मानव जाति के प्रतीकों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम उन 2 आरंभ में पर लौटते हैं जिन पर हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी रूपहीन और रिक्त थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है, और परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। उत्पत्ति 1:8।
आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा बना, और उसके बिना जो कुछ बना उसमें से कुछ भी नहीं बना। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:1-5।
आदि में के इन दो द्रास शांकों का उपयोग करते हुए वचन परमेश्वर, जिसने सब वस्तुओं की सृष्टि की, ने अपना जीवन भी दे दिया, क्योंकि उसमें जीवन था और उसका जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सृजित मनुष्य की ज्योति सृष्टिकर्ता की धार्मिकता है। सृष्टिकर्ता की धार्मिकता पवित्र स्थान के दियों की बाती है।
और उसे ये दिया गया कि वो महीन मलमल, शुद्ध और उजली पहने, क्योंकि वही महीन मलमल संतों की धार्मिकता है। प्रकाशित वाक्य 19:18।
बाती को ईंधन देने वाला तेल विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की गतिविधि का प्रतीक है। आदि में पृथ्वी अंधकारमय थी और प्रकाश नहीं था। तब यीशु ने अपना जीवन दे दिया, वही जीवन जो उनमें था, ताकि मनुष्यों के लिए प्रकाश हो सके।
और पृथ्वी पर रहने वाले सब उसकी आराधना करेंगे, जिनके नाम जगत की स्थापना से वध किए गए मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे हुए नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8।
जब यीशु ने मानव जाति के लिए बलिदान होना चुना, तब उन्होंने अपना जीवन दे दिया ताकि मनुष्यों को प्रकाश मिले। जैसा कि इन दो अंशों में है, जब भी प्रकाश आता है, वो प्रकाश उपासकों के दो वर्ग सामने लाता है, जिन्हें प्रकाश और अंधकार द्वारा निरूपित किया गया है, दिन की संतान या रात की संतान।
परंतु हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। तुम सब प्रकाश की संतान हो और दिन की संतान। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। 1 थिस्सलुनीकियों 5:5।
जब हम ये पहचानते हैं कि पवित्र आत्मा का दिन की संतानों के साथ कितना घनिष्ठ और अनंत संबंध है, तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की संतान और पवित्र आत्मा दोनों के प्रतीक इतने निकट से क्यों जुड़े हुए हैं। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अंश में हम यीशु को अल्फा और ओमेगा के रूप में देखते हैं। हम पिता को पंक्ति पर पंक्ति के अनुप्रयोग के द्वारा देखते हैं, और पवित्र आत्मा अपने विषय में अपनी अंतिम प्रतीकात्मक प्रस्तुति दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल के पवित्र पुरुष पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोले थे। उत्पत्ति में अपने विषय में उनका पहला कथन उन्हें जल के ऊपर गतिमान या मनुष्य जाति पर गतिमान दिखाता है, और अपने विषय में उनका अंतिम उल्लेख इस प्रकार है,
और आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, और जो सुनता है वो कहे आओ, और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल मुफ्त में ले। प्रकाशित वाक्य 22:17।
आदि से अंत तक पवित्र आत्मा को मानव जाति के साथ संबंध में पहचाना जाता है, क्योंकि दिन के पुत्र ईश्वरीयता और मानवता के संयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौलुस जैसे यशाया भी ये बताते हैं कि मनुष्य पात्र हैं, और पवित्र स्थान के दीवटों में ऐसे पात्र थे जिनमें बत्ती रखी जाती थी, और तेल उन पात्रों में उतरता था, ताकि उस ज्योति को प्रकट करने के लिए आवश्यक ईंधन उपलब्ध हो। वही ज्योति जो मसीह की धार्मिकता है। हम पवित्र आत्मा के पात्र हैं, जो ईश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति हैं, जैसा कि परमेश्वर के वचन के आदि से अंत तक पहचाना गया है, और जैसा कि भविष्यद्वाणी की आत्मा के लेखों में स्पष्ट रूप से पहचाना गया है। दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में, जो एडवेंटवाद के प्रारंभ और अंत में पूरा हुआ था, दो भिन्न संदेश हैं, एक कलीसिया के लिए और एक संसार के लिए।